ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी के संबंध हर स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार के 18वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण और जोखिम मुक्त कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की दो सशक्त डेमोक्रेसी, विश्व की दो लीडिंग इकोनॉमी साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती है, फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है।
इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। दोनों नेता आज दोपहर में राजधानी में आयोजित हो रही अंतर सरकारी परामर्श समूह आईजीसी की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आईजीसी की बैठक में प्रौद्योगिकी पर विशेष चर्चा होने तथा सतत विकास और नवाचार पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श होने की संभावना है। दोनों पक्षों के बीच उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। दोनों नेता आज दोपहर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग और मजबूत करने, हरित और सतत विकास में साझेदारी पर वार्ता होगी। वेनेजुएला के कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सुश्री रॉड्रिक्स का स्वागत किया और कहा कि उनकी यात्रा भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्य रात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात अगले 4 घंटों में कमजोर होकर उत्तर ओडिशा के तट को पार कर जाएगा। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में आज शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल हो जाने की संभावना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज सवेरे भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से कोलकाता और अन्य जिलों में तेज बारिश हो रही है। इससे दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन, सागर, नामखाना और पाथर प्रतिमा इलाकों में कई पेड़ उखड़ गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो जाएगा। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पार्टी ने दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व सांसद प्रताप राव चिखलीकर लोहा से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों नेता अपनी उम्मीदवारी की घोषणा से कुछ घंटे पहले एनसीपी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज सांबा जिले के सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। यह अभियान रामगढ़ सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वन क्षेत्रों सहित कई संवेदनशील स्थानों की जांच कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के पहली पारी में 259 रन के जवाब में भारत की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई। भारत ने आज 1 विकेट पर 16 रन से आगे खेलना शुरू किया था। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सिल्टनर ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।